धरती पर एक दिन बादल भी गरज उठे ना अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ ना बोले बस चुपके से घूट लिया दम। और एक दिन
माटी रूठी आज हमसे बीज उगला तन से। बोली ना दूंगी तुझे जन्म ना मिलेगा दूध स्तन से। ओ ना लो रे ना काला टीका गिर गया तू मन से।
जलती दुनिया को बुझा ले बुझ पे दीपक को बचा ले। सोती किस्मत को जगा ले पतझड़ में फूल खिला ले। बड़ी भूल हुई है हमसे ना रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी
दे दे माफी घायल है बढ़ते कदम। कर दे तू अब मरहम।
अव्यक्त मुरली 26 अक्टूबर 1975। कोई भी तहधारी में संकल्प से बकर्म से फंसना, इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना, चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव या याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव या तन मन धन से सेवा की हो, लेकिन सर्व प्राप्तियां इस देह रूपी सांप को टच करने से इस सांप के विष के कारण जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है, वैसे ही यह सांप भी अर्थात देह में फंसने का विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। विष अर्थात जहर टॉक्सिन, डिटॉक्स अर्थात विष हरण, विष को बाहर निकालना। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है, इसको मिटाना बहुत मुश्किल है। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे यह विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्यों को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना। यह कौन सी मंजिल से गिरने की तरह है। पांचवी, अभी बढ़ गया होगा। यह पांचवी मंजिल से गिरने की बात है। कई बच्चे अब तक अलबेलेपन के संस्कारवश इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते। वर्णन भी ऐसा साधारण रूप से करते हैं कि मेरे से चार पांच बार यह हो गया, आगे नहीं करूंगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता, जैसे साधारण समाचार सुना रहे हैं। इसलिए कई धर्मों में प्रतिक्रमण का नियम है। प्रतिक्रमण अर्थात पश्चाताप। दिन की शुरुआत जब होती है तब वो प्रतिक्रमण करते हैं और संध्या समय फिर प्रतिक्रमण करते हैं। दिन में प्रतिक्रमण इसलिए कि रात में अगर कोई पाप किया है उसका पश्चाताप सुबह, और दिन भर यदि कोई पाप हुआ है तो उसका पश्चाताप शाम को। उसको कहा जाता है प्रतिक्रमण, रिपेंटेंस। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कॉन्ट्रीशन। माय कॉन्ट्राइट स्पिरिट। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता, जैसे साधारण समाचार सुना रहे। अंदर में लक्ष्य रहता है कि यह तो होता ही है, मंजिल ही बहुत भारी है, अभी यह कैसे होगा। लेकिन फिर भी आज ऐसे पापात्मा ज्ञान की ग्लानी करने वालों को बाप दादा क्या दे रहे। वार्निंग अर्थात सख्त चेतावनी। बाबा क्या कहते थे, एक तो राय देते, बाप आए तुम्हें राय देने, और क्या देते, बाप आए तुम्हें बताने, तुम्हें समझाने, बाप आए तुम्हें अपनी मत देने। इस मत में सारी मतें समाई हुई है, कल की मुरली, और तुम्हें रास्ता बताने, समझ देने, सावधानी देने, खबरदार करने, सतर्क करने, फरमान देने, सचेत करने, और कभी कभी चेतावनी, और कभी कभी वार्निंग। बाबा ने कुछ कुछ इंग्लिश शब्द इंग्लिश ही रख दिए, इसलिए हमने भी यहां सॉलिड फूड को सॉलिड फूड ही रखा है और लिक्विड फूड को लिक्विड फूड ही रखा है। उसको रसाहार नहीं बनाया, क्योंकि रसाहार बनाते ही लोग सीधा जूसेस में चले जाते हैं। फॉलो फादर को फॉलो फादर ही रखा है। तुम सदगुरु को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स हो, किसी मुरली में कहा है तुम सदगुरु के को फॉलो करने वाले चेले, शिष्य, डिसाइपल हो। नहीं, उसने इंग्लिश शब्दों को इंग्लिश ही रखा है। लेकिन फिर भी आज ऐसे पापात्मा ज्ञान की ग्लानी करने वालों को बाप दादा क्या कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि आज से इस गलती को कड़ी भूल समझ कर ही यदि मिटाया नहीं तो क्या। बहुत बड़ी कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। ये 76 में थी, और कल की मुरली में क्या होमवर्क था, शाम को जो चली, बच्चे कहते हैं क्या करे, फेस दिखाई देता है, कोई सुंदर कोई असुंदर, कोई गोरा कोई काला, बात करते करते तो देखना तो पड़ता ही है ना, किसी की आंखें ही पसंद आ जाती है, किसी की नाक ही बहुत अच्छी है, हमारी चपटी है, किसी की सीधी है, किसी के बाल ही अच्छे है। तो बाबा ने क्या युक्ति बताई कल, क्या करो, भ्रुकुटी में चेहरे पर आंखें हैं पर चेहरे में और भी चीजें हैं, भ्रुकुटी भी तो है। और बाबा ने अपना उदाहरण दिया, लुक एट मी, मैं देखो, मुझे भी तो चेहरे दिखते हैं। तो आज का प्राणिक टूल है सोल कॉन्शियस विजन, आत्मिक दृष्टि, और कल की मुरली से ये होमवर्क भी है। जब भी किसी को देखो, क्या देखो, सबसे पहले तो आत्मा तो दिखती नहीं है, पहले फोरहेड दिखने का अभ्यास करो, पहले तो चेहरा देखने का अभ्यास, धीरे धीरे पहले फेस, फिर माथा, बस यहां देखो होगी कहीं ना कहीं तो होगी आत्मा। ये तो श्योर है कि इधर ही है। ये जो एरिया है ना, बस इतना जोन है, मतलब कैसा है, ये ब्रॉड चाहिए, अगर कहो इतना ही देखो तो बहुत मुश्किल है, ये छोड़ के बाकी सब देखेंगे फिर। ये शिक्षा है तो बाबा कब से दे रहे हैं, आत्मा आत्माभिमानी दृष्टि कोई नई बात है क्या? ये उपदेश तो कब से चल रहा है, किसी के लिए कहा जाता है, एक सज्जन गीता का उपदेश पिछले 20 साल से सुन रहे हैं, इंक्वायरी करने पर पता चला गीता उनकी धर्म पत्नी का नाम है। तो पहला होमवर्क कल की मुरली से क्या देखना है, यहां देखो, और अगर यहां दिख जाए कहीं, यहां भी दिखे तो भी ठीक है, कहीं तो दिखेगा, ये जो जोन है दिस इज ओके, यहां देखने में खतरा कम है, इधर प्रॉब्लम आ सकता है, इधर भी आ सकता है। एक पहला होमवर्क, दूसरा दुआए दो और दुआए तो इसमें क्या क्या समाया हुआ है, ज्ञान योग धारणा और सेवा, तो ये है चिंतन का विषय, इसमें ज्ञान कैसे समाया है, इसमें योग कैसे समाया है, चर्न दिस टॉपिक, ये टॉपिक चर्निंग का टॉपिक है कि दुआएं देने में ये चार चीजें कैसे समाई है और दुआएं लेने में ये चार चीजें कैसे समाई है, इस पर आज थोड़ा कांत में बैठकर चिंतन करना। चिंतन भी एक टूल है प्राणिक लिविंग में। और तीसरा होमवर्क बलि, किसकी, बॉडी कॉन्शियस का, मैं अभिमान आता है उसको दबाओ तो क्रोध आता है, तो प्राणिक यात्रा स्वयं को जानने की यात्रा है, ये जो मैं है इसका इतना भयंकर विस्तार है, इस विस्तार को समझना है, मैंने इतने रूप धारण कर रखे, अकेले में हम कुछ और है, किसी विशेष व्यक्ति के साथ हम कुछ और है, दूसरों के साथ कुछ और है, मित्रों के सामने कुछ और है, युगल के सामने कुछ और है, बॉस के सामने कुछ और है, साथियों के साथ कुछ और है, और अपने जूनियर जब है तब तो एक अलग ही रौब होता है, अपने प्रशंसकों के सामने कुछ और है, अपने निंदकों के सामने कुछ और है, मैन इज मल्टी साइकिक पर्सनैलिटी, बहुचित्तवान है, उसके इतने रूप है समझना कठिन है, रंग बदलता है गिरगिट की तरह, अभी भी कुछ अभी भी कुछ अभी भी कुछ अभी भी कुछ, उसमें से कौन है वो, सो डिफिकल्ट, मल्टी साइकिक है, बहुचित्तवान कहा गया है उसको, उसके एक रूप नहीं है, कई रूप है, और स्वयं के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जानना इस भट्टी का लक्ष्य है, मेरा स्वयं से परिचय हो जाना, मैं हूं कौन, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, समय अनुसार मैं बदलता हूं, स्थान अनुसार बदलता हूं, परिस्थिति अनुसार बदलता हूं, व्यक्ति अनुसार बदलता हूं, कितने अलग अलग रूप है। एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था, उसने ऐनक पहनी थी, उसके बाजू में दूसरा व्यक्ति बैठा है, तो वो क्या कर रहा था, जो अखबार है कभी सामने लेता था और कभी पीछे, फिर कभी इधर, फिर कभी इधर, कभी नीचे, कभी खुद झुकता था, तो दूसरे ने कहा मुझे लगता है तुमको आई चेकिंग की आवश्यकता है, शायद तुम्हारी नजर और गिर गई है और चश्मा शायद बदलना पड़े, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है उसको अखबार पढ़ने में, इसीलिए तो ऐसे ऐसे ऐसे। वो कहता है मेरी नजर बहुत ही अच्छी है, वास्तव में मुझे चश्मा पहनने की आवश्यकता नहीं, हो तो मैं मार्केट में जा रहा था, गार्डन में गुजर रहा था, ये चश्मा मुझे वहां पड़ा हुआ मिला, ये मेरा है ही नहीं, दिस इज नॉट माइन, ये तो मैं पहन के देख रहा हूं क्या क्या होता है। हमने भी कई सारे ऐसे चश्मे पहने हैं जो हमारे है ही नहीं और जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं है, वो स्वभाव हमारा है ही नहीं, वो देहभान का स्वभाव हमारा है ही नहीं, वो किसी और का चश्मा है, और इसलिए कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये सॉलिड फूड भी हमारा चश्मा नहीं है जो हमने धारण कर रखा। तो आज का टूल बॉडी कॉन्शियस सोल कॉन्शियस विजन, जब भी देखो तो क्या देखेंगे, सितारा नहीं, पहले ब्रुकुटी और फिर इसमें अलग अलग आत्मा के रूप क्या क्या है, एक तो बिंदी वन, दूसरा स्टार, तीसरा बिंदी डॉट एक ही आ गया, तो पहला बिंदी, दूसरा सितारा, तीसरा ज्योति, आत्मा क्या है ज्योति, चौथा मणि, पांचवा डायमंड, मणि डायमंड एक ही है, और आत्मा क्या है, नहीं वो तो बहुत सारी चीजें हैं, देखते समय किस बात का अनुभव करेंगे कि ये आत्मा है। एक तो स्टार देख सकते हैं क्योंकि हमें देखने के लिए स्थूल से कंपैरिजन चाहिए, हम एकदम एब्स्ट्रैक्ट जो अमूर्त है उसका चिंतन नहीं कर सकते ना उसको देख सकते, हमें कुछ तो स्थूल ठोस हाथ में चाहिए, जो तिलक, आत्मा क्या है तिलक, इस तरह का चिंतन चाहिए हमारे पास। तो कभी किसी को ज्योति देखो, किसी को स्टार देखो, किसी को बिंदी देखो, और किसी को बीज, आत्मा क्या है बीज भी है, ये बीज है, जैसे परमात्मा स्वयं के लिए कहता है मैं चैतन्य बीज हूं, वैसे आत्मा भी एक बीज है, तो ये बीज है, ये ज्योति है, ये मणि है, ये डायमंड है, ये स्टार है, ये हीरा है, और क्या तिलक है, और रोशनी एब्स्ट्रैक्ट है, स्थूल वस्तु चाहिए, बल्ब, हाँ वो ठीक है वस्तु चाहिए, हमें वस्तुओं की भाषा समझ में आती है, हम साकार दुनिया में रहते हैं, हमें उस अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट निराकार समझ में नहीं आता है, ज्वाला भी एब्स्ट्रैक्ट है, सूर्य मास्टर ज्ञान सूर्य, हाँ ये दिखाया हो सकता है, मास्टर ज्ञान सूर्य जिसमें से किरणें, इस तरह की चीजों का आज अभ्यास करना है। जब भी किसी को देखो उस व्यक्ति को भूल जाओ और ये याद करो क्या क्या देखना है, बुद्धि इसमें बिजी हो जाए, सर्च लाइट टॉर्च अच्छी चाहिए चीजें, जो दीपक ज्योति, वैसे तो देख लिया दीपक ज्योति दीप्ति मोती डायमंड हीरा ज्योति ये सारी चीजें। तो ये आज का अभ्यास है, इसमें रहेगा, इसमें बुद्धि रहेगी तो बुद्धि शरीर की तरफ नहीं जाएगी, शरीर में विष भरा है, बहुत खतरनाक विष है ये, हलाहल विष से भी खतरनाक व्यसन है इस विष में। तो आज भट्टी का 11वां दिन, 10 दिन प्राणी की यात्रा के पूरे हुए हैं और 10 दिनों में आत्माओं के भिन्न भिन्न अनुभव है, हो सकता है पहले, क्योंकि अभी हम नए जगत में प्रवेश कर रहे हैं तो ये ना समझना जो पहले सब ठीक चल रहा था अब भी ठीक चलेगा, अगर पहले खराब चल रहा था और अब ठीक हो गया तो ये भी हो सकता है कि पहले सब ठीक चल रहा था अब सब उलट पुलट हो जाएगा, क्योंकि उस दिन भी सुनाया था ओल्ड सेल्फ न्यू सेल्फ एंड हायर सेल्फ, हमारे तीन रूप है, एक पुराना मैं, एक नया मैं, और जो मुझे बनना है जो मेरा हायर है, तो हम उस पुराने मैं से नए मैं में आ रहे हैं, सॉलिड के जगत से लिक्विडिटी में प्रवेश किया है और लक्ष्य बहुत ऊंचा है, ये केवल डाइट की बात ही नहीं है, डाइट तो बहुत छोटा सा हिस्सा है इसका, क्योंकि सॉलिडिटी से लिक्विडिटी में आते ही सबने अनुभव किया होगा, हलचल हुई है कुछ तो, इस जगत से इस जगत में आ गए। और कईयों का ऐसा भी हुआ होगा कि भूख और प्यास से दूर नुकट गए अपने आप, अब ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। परंतु फिर भी इस यात्रा में अगर आगे बढ़ना है तो खा पीना पड़ेगा जबरदस्ती, क्योंकि ये उपवास नहीं है, ये फास्टिंग नहीं है, ये जूस फास्टिंग नहीं है, ये रसाहार नहीं है, ये रॉ डाइट नहीं है। इसमें जबरदस्ती पीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये ट्रांजिशन करना है। और ये भी नहीं समझो कि ये केवल लिक्विड की यात्रा है। लिक्विड तो एक टूल है। आबू रोड से माउंट आबू आना है, एक कार में बैठे और आ गए। आने के बाद क्या किया? कार को चिपक के बैठे क्या? कितनी अच्छी कार है, कितनी अच्छी कार है, मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे ऊपर पहुंचाया, हो गया, उसका काम पूरा हुआ। वैसे लिक्विड ने आपको उस लेवल 3 से लेवल 4 तक के बीच का टूल है ये, फिर लिक्विड भी हट जाएगा। इसलिए ये नहीं पूछो कि लिक्विड से ये बीमारी जाएगी क्या, वो बीमारी, ये लिक्विड किसी बीमारी को जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है टूल। ऐसे प्रश्न बहुत सारे हैं लोगों के, डायबिटीज ठीक हो गया, बीपी ठीक होगा का, इतना छोटा लक्ष्य नहीं रखो। ये तो एक सौगात के रूप में प्राप्त होगा सारी बीमारियों से मुक्ति, कोई बीमारी टच ही नहीं करे। यहाँ बीमारी तो बहुत दूर की बात, हमने तो यहां तक कहा है कि बुढ़ापा दूर हो जाएगा, उससे भी आगे मृत्युंजय या अमर बनने की यात्रा है, अमरत्व प्राप्त करने की यात्रा है। आत्मा तो अमर है ही, ये फिजिकल इमोर्टैलिटी की यात्रा है। फिजिकल इमोर्टैलिटी, सोल की इमोर्टैलिटी नहीं, फिजिकल इमोर्टैलिटी की यात्रा। साइंस के पास इसका उत्तर आज तक नहीं मिला है कि व्यक्ति मरता क्यों है, नोबडी नोज। साइंस, अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो आज के लोगों के, भाई बहनों के अनुभव सुनते हैं। 5 सुनो फिर हम बोलते, फिर 5 फिर बोलेंगे। कुछ टेक्स्ट भी होंगे तो टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ वालों के भी कोई अनुभव है, भाई जी अनुभव सुनाइए। कल सुना रहे थे कुछ, कविता भी सुनाना है, कविता और अनुभव दोनों आ जाओ, दो दो मिनट में। इनका अच्छा अनुभव, इधर आ जाओ, जगह बहुत है आपके पास। और वैसे भी प्राणिक में सब।
ओम शांति, मेरा नाम मोहित है, मैं 2 दिन पहले अमेरिका से आया हूँ और ये डाइट फॉलो कर रहा हूँ प्राणिक यात्रा में, स्टार्टिंग से हूँ। और 7 दिन करने के बाद सबसे बड़ा पेपर आया कि ट्रैवल करना था यहाँ पर, जो कि 6 महीने पहले प्लान था, तो उसमें पेपर था लेकिन इजीली पास हुआ, क्योंकि फ्लाइट का और प्राणिक यात्रा एकदम अपोजिट है। फ्लाइट में आप खाना कुछ भी ले जाओ, बस लिक्विड अलाउ नहीं होता है अंदर। तो अंदर जाने के बाद जो पैक्ड कोकोनट वाटर मिलता है उस वो सब छोड़ दिया कि प्रिजर्वेटिव है क्या है, वो सब लिया और यात्रा की और इजीली पहुंच गए।
अनुभव एक, वो लोग इतनी बेरहमी से आपकी चीजें फेंक देते हैं। अनुभव एक बार शहद लेके गए थे, कहीं जा रहे थे तो पूरा वो छोड़ना पड़ा। नहीं लेके जाने दिया।
और लास्ट ईयर जब यहाँ पर आया था तो सचिन भाई ने कहा था कि 20-20 में ट्राई करना कि साल में कम से कम 10 दिन साइलेंस में जाओ और वहां से रतन मिलेंगे। तो 2 जुलाई से चालू किया था, 7 फरवरी तक बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, अलग अलग वेट लॉस हुआ, डिटॉक्स हुआ, इमोशनल मेंटल सब हुआ। तो इसीलिए अभी पिछले 11 दिनों में इतना कुछ नहीं हुआ, केवल 2-3 दिन हल्का सा चिड़चिड़ापन था, लेकिन बहुत इजीली यात्रा चल रही है अभी और आगे ऐसे कंटिन्यू रखेंगे।
यहाँ कैसे कर रहे हो?
यहाँ पर बहुत इजी है करना। जब 20 दिन थे इस इनिशिएशन से पहले, उसमें क्वेश्चन पूछा था मैंने कि फरवरी में मधुबन आना है तो कैसे आया जाए, यहाँ पर कैसे करेंगे फॉलो। तो भाई जी ने रिप्लाई किया था कि ब्लेंडर्स आते हैं अपने खुद के, वो लेकर आओ रिचार्जेबल, तो वहाँ से एक वो लेकर आए। तो यहाँ पर जूसेस के लिए रविनेश भाई से बात की थी आने से पहले, तो उन्होंने बताया कि ज्ञान सरोवर में पांडवा में कहाँ कहाँ पर जूस मिल सकता है कंज्यूम करने के लिए, और बाकी फ्रूट्स वगैरह लेकर के स्मूदीज बनाना और दाल कड़ी यहाँ पर तो सब है ही अवेलेबल, तो डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल।
जहाँ चाहे वहाँ रहा है
बिल्कुल।
भगवान मिल गया तो जूस को ढूंढना क्या बड़ी बात।
ओम शांति।
कविता
ये तो सब तो है, ये सब तो बोल के कहते हैं।
ऑन कर दो।
हम लास्ट ईयर यहाँ इंडिया से यूके गए थे, तो यूके जाने से पहले हम इस चीज के ऊपर चिंतन कर ही रहे थे कि भाई कैसे अपने जीवन को नेचर के करीब लेके आ जाए, मतलब पूरा लिविंग अपना। तो उस हिसाब से हमने प्रकृति को देखा और प्रकृति में एक चीज हमें ये सीखने को मिली कि जितने भी पशु पक्षी हैं वो एक ही टाइप का खाना जीवन भर खाते हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है। और प्रकृति में कोई पशु पक्षी ऐसा नहीं है जो अग्नि में पका के खाने को खाए। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसने इतने व्यंजन बना दिए और इतना पकाना और उसके बाद इतनी बीमारियां। तो उससे हम फिर यूके गए, तो यूके में एक चीज, पहली जो चीज पता चली कि वहां पे ग्लूटेन फ्री करके एक डाइट है। तो पहली बार हमें पता चला अच्छा जो जिस पे पूरा देश चल रहा है गेहूं, वहां पे वो ग्लूटेन फ्री। तो वहां से हमें पता चला कि ग्लूटेन के बहुत सारे शारीरिक बीमारियां होती हैं।
एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं सीलियक डिसीज, जिसमें पेशेंट को पेट में कुछ भी अन्न पचन नहीं होता है और वहां पर पता चलता है ये ग्लूटेन की वजह से। और ग्लूटेन सबसे ज्यादा गेहूं में है। ग्लूटेन एक चिपचिपा पदार्थ है जो अंदर जाके चिपकता है और ग्लूटेन की मात्रा भयंकर रूप में मैदे में है। अगर आज एक तंदूरी रोटी खाई तो हो सकता है अगले 5 से 6 दिन भी वो चिपकी रहेगी, वो डाइजेस्ट ही नहीं होती है और आपको कब्ज करेगा। और ग्लूटेन बाकियों में भी है पर कम कम मात्रा में, गेहूं में भी है, उसमें भी, दाल में भी, वो बाकी चीजों में भी है, मेज ओट्स, पर उसमें बहुत कम है। सबसे ज्यादा ग्लूटेन है गेहूं में। इसके लिए रोटी है खोटी, आटा में है घाटा, कच्चा है सच्चा।
तो वहां पे एक माता मिली है ब्रह्म कुमारी की, उनको अर्थराइटिस है और मेडिकल फील्ड में अर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने ग्लूटेन 3-4 साल से छोड़ा हुआ है और वो 70 साल के चीज सुपर एक्टिव। तो मतलब वहां से हमने चीजें समझना शुरू किया। हमने भी फिर वीट छोड़ा, फिर राइस छोड़ा, फिर उसके बाद हमने कैफीन छोड़ा, कॉफी, और फिर डेरी फ्री। और अभी मतलब तो अभी समरी में अभी जो मिल्कशेक, फ्रूट्स, सैलेड और दाल का सूप, बेसिकली ये 4 चीजों पे हम हैं। तो अभी हम
कविता
कविता का टाइटल है वक्त की धारा। कभी वक्त बिताने के उपाय खोजते तो कभी पता ही ना चले कि वक्त कब निकल जाए। किसी से पूछो कहाँ हो, बस बहुत व्यस्त है, वक्त नहीं है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम कहीं खो गए तो समय भी कहीं खो गया, ना अपने लिए समय ना ही अपनों के लिए। वक्त को ना मुट्ठी में पकड़ा जा सकता, ना ही वक्त को किसी आंचल में समाया जाता। वक्त वो धारा है जो निरंतर प्रवाहित हो धैर्य बन जाता है। वक्त वो तरंग है जो हवा में लिपटा उमंग बन जाता है। वक्त वो आसमा है जो हर दृश्य का दृष्टा बन सीख बन जाता है। सुना है वक्त कभी अच्छा होता है तो कभी वक्त बुरा हो जाता है। वक्त अच्छा बुरा नहीं, पर वक्त उसका जो वक्त का हो जाता है। वक्त किसी को शहंशाह बना दे तो वक्त किसी को राह का फकीर, पर वक्त जितना शहंशाह को मिला है उतना ही वक्त फकीर को भी। वक्त वो जागीर है जो शहंशाह फकीर के परे है। वक्त को संभालो तो वक्त तुम्हें संभाल लेगा, शहंशाह फकीर का तो पता नहीं पर कुछ तो जरूर बना देगा।
थैंक यू।
जींद जिले के नवाना शहर से हूँ मैं, 53 ईयर, हरियाणा के जींद जिले के नवाना शहर से हूँ मैं, 53 ईयर ओल्ड हूँ और मैं इंजीनियर हूँ। 20 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ, जी न्यूज़, दैनिक भास्कर में भी मैंने काम किया है और इंजीनियर के तौर पर सर्वेयर का भी मैंने काम किया है और काउंसलिंग का भी मैंने कोर्स किया और 200 से ज़्यादा केस में काउंसलिंग के भी सॉल्व कर चुका हूँ। और अभी 11 नवंबर से मैंने आपकी भट्टी ज्वाइन की हुई है और रेगुलर मैं कर रहा हूँ और 1 जनवरी से मैंने अन्न छोड़ दिया था और 1 जनवरी से मैं लगातार वेजिटेबल्स के जो सब्जियाँ हैं और जूसेज हैं और हर्बल टी है इन्हीं के ऊपर मैं 1 महीना तक पूरा रहा 30 जनवरी तक। और इसके बाद 8 फरवरी की भी तैयारियां मैंने शुरू कर दी थी तो 1 हफ्ता जो मैंने फरवरी के अंदर शुरू के अंदर मैंने रोटी वगैरह भी जैसे ली और चीज़ें भी ली तो उसका भी असर देखा मैंने तो उससे जो है एकदम से डाउन फीलिंग जैसे शुरू हो गई थी। लेकिन 1 जनवरी से और 30 जनवरी के रिजल्ट बहुत ही मारुलस थे क्योंकि मैं 15 साल से मैं ज्ञान में हूँ, पूरे परिवार हमारा ज्ञान में है क्योंकि 3 लड़कियां हैं और युगल है, सभी हम ज्ञान में हैं। और जैसे मैंने देखा कि पिछले 15 साल से मैं रेगुलर सुबह के समय अमृत वेले 2-3 बजे हमेशा उठता रहा और सुबह 6 बजे मैं सेंटर पर जाता रहा लेकिन दोपहर में क्योंकि मेरे पास सेवाएं 3-3 जगह की हैं, 2 सेंटर हैं, 1 लोकी घर है, उनकी सेवाएं होने के कारण दिन में मैं कभी भी सो नहीं पाया था और नुमा शाम योग जिंदगी में मेरे से कभी भी नहीं हुआ। ऐसे नींद के झटके जैसे आते थे, ना कभी मैं पत्र लिख पाता था ना कभी जो योग लगा पाता था, बस नींद ही नींद में झटके खाता रहता था। लेकिन मेरी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मैं तो ये सोचने लगा था कि शायद दोपहर में सोने वाले लोग ही कंप्लीट बन सकते हैं, संपूर्ण बन सकते हैं, हम जैसे लोग बन ही नहीं सकते। लेकिन 1 जनवरी से जब मैंने पका हुआ खाना बंद किया, अन्न बंद किया, तो मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया और मैं हैरान रह गया कि मेरी नींद ही उड़ गई। अब मैं रात को 11-12 बजे तक मैं जागता हूँ, कभी भी दिन में नहीं सोता हूँ, तो एकदम से मैं हैरान रह गया। और लेकिन अभी इसके जो है दूसरे भी सिम्टम जैसे अब आ रहे हैं कि जो मेंटल फिजिकल जो डिटॉक्स है उसके भी रिजल्ट आ रहे हैं। अब 8 तारीख से भी मैं पूरा ये लिक्विड पे चला गया हूँ। लेकिन अभी जो डिटॉक्सेशन की जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ वो ये आ रही है कि अब मेरे सुस्ती के संस्कार जागृत हो गए हैं। अब मैं सुबह, जबकि हालांकि 15 साल से सुबह 6 बजे वाले क्लास में लगातार कंटिन्यू जा रहा हूँ मैं, लेकिन अभी मेरे साथ क्या होगा कि मैं सुबह के समय में 3-4 बजे उठता हूँ तो मैं 4-5 घंटे तक मेरे योग में बैठने की आदत, और मैं उठता ही नहीं हूँ, बैठ के योग में ही रहता हूँ और मैं क्लास में भी नहीं जाता, मैं नहाता भी नहीं, तो मतलब कि 8 बजे तक जो है ना, 8-9 बजे तक मैं योग में ही रहता हूँ। तो अब क्या इसका किया जाए, क्या करना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में मुझे सोल्यूशन चाहिए था। ओम शांति।
ओम शांति। जो आप ये प्राणिक जर्नी में हैं और लिक्विड डाइट पर भी है, वो आज 4 दिन हो गए ठीक से कुछ भी नहीं ले रही है, बार बार बोल रही है कि उसका पेट भरा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 स्पून कुछ भी लिक्विड लेती है, उसके बाद उसका पेट भर जाता है ऐसे करके। कल ज़बरदस्ती 1 गिलास या 1.5 गिलास जूस पिया था और कुछ अजीब और गरीब उसके साथ हो रहा है कि वो कह रही है कल जैसे उसको जूता बहुत पसंद है तो जूता खरीदने के लिए गए तो कोई जूता ऐसे फैशनेबल हो, तो उस क्या जूते में भी वाइब्रेशंस होते हैं कि वो बोल रही है कि उस जूते को पहनते ही उसको लग रहा है वो ब्लाइंड हो रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है उससे, या फिर ऐसे कह रही थी कि उसको लग रहा था कि वो आउट ऑफ कनेक्शन है दुनिया से, फिर वो जूता उतारते ही वो ठीक हो गया। ऐसे करके उसका कोई पसंदीदा जूता जो पहले था उसने नहीं लिया, फिर बहुत सिंपल सा कोई जूता ऐसे लिया। ये सब क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा है, और गाइडेंस इसलिए चाहिए। आज पहले भी वो फ्रूट डाइट पे रह चुकी है 31 दिन की, हालांकि 17 दिन के बाद वो बाबा का भोग लेकर उसको ब्रेक किया था, और उसके बाद ऐसे टोटली गिनती किया जाए तो 31 डेज है, पर 17 दिन तक पूरा कंटिन्यू चला ऐसे। और ऐसे बीमार पड़ती है तो निर्जला ज़्यादा से ज़्यादा वो 2-3 दिन किए हैं। 3 दिन इसलिए क्योंकि 3 दिन के दिन उसने आधा कप पानी लिया था, इसलिए उसको तीन दिन का मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, पर ऐसे वो रह जाती है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। पर कल जूस पीने के बाद दो दिन से जो वो नहीं ठीक से कुछ खाना पीना ले रही, खाना तो नहीं मतलब पीना लिक्विड नहीं ले रही थी, फिर भी वजन उसका जैसे था 32.50 सेम ही था, पर कल जूस लेने के बाद उसने दिखाया ऐसे उसका वजन बढ़ने की वजह उल्टा घट गया है जो कि 32.15 है।
ओम शांति। भाई जी थैंक यू सो मच। मैं 9 डेज से प्राणिक भट्टी कर रही हूँ, लेकिन अभी जब मैं ये प्राणिक भट्टी कर रही हूँ आफ्टर 2-3 डेज मुझे नाइट और एनी टाइम समटाइम्स लेग और हैंड में मुझे नमनस आ रही है। सो नाइट में भी मैं अचानक उठ जाती हूँ इस नमने से, हाथ में हो जाता है कभी कभी, पैर में तो नहीं होता है ज्यादा, जब बैठती है तो हो जाता है, लेकिन नाइट में हाथ में हो जाता है, दोनों हाथ फिंगर्स में, समटाइम्स फिंगर दोनों को अटैच करके सो गए तो हो जाते, नहीं तो एक पोजीशन में सो गए तो हो जाता है ऐसा। प्लीज मुझे सजेस्ट करें इसके लिए मैं क्या करूं। थैंक यू। ओम शांति।
एक ये एक्सपीरियंस है, डिटॉक्स इज गोइंग ऑन व्हाट नो क्वेश्चन टुडेज क्लास, ये पिछले दिन का है। स्टार्टिंग टॉक एंड स्टोरी वाज वेरी नाइस, आई फेल्ट दैट इट्स माय लाइफ स्टोरी ओनली। कोई भी परिस्थिति को वरदान समझकर चलना है, बाबा ने जैसे भी रखा है वो ही हमारे लिए बेस्ट है। जिसको परमात्मा महाराज का आनंद मिल जाता है उसके लिए दुनिया के सब रस फीके हैं। थैंक यू सो मच भाई जी। असफलता का रूप देखकर समझना है कि ये परीक्षा है, कल के महावाक्य, इससे पार होने के बाद परिपक्वता आने वाली है, तो वह असफलता नहीं है लेकिन आप अपने पुरुषार्थ के फाउंडेशन को पक्का करने का एक साधन है। भाई जी यहाँ बाबा डिटॉक्स की बात कर रहा है। ओम शांति। ये 5 क्वेश्चन हो गए भी।
अच्छा भाई 3-4
और एक ये हो गया।
अच्छा और एक प्रश्न ले लो। 27-4-72 अभी एक मिनट।
ओम शांति भाई जी। कल मेरी बहन मुझे डरा रही थी कि ये वाली डाइट करने से शेन वॉन फेमस क्रिकेटर की डेथ हो गई थी, मगर मैंने अभी अपनी भट्टी कंटिन्यू रखी है, तो आप बताइएगा क्या ऐसा कुछ खतरा है। बाकी मैं तो खुश हूँ और अभी तक मेरा आज 7th डे है क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी।
सबसे पहले तो आपकी बहन को शी शुड डू हर होमवर्क, होमवर्क पूरा नहीं किया। शेन वॉन जो थे वो क्रिकेटर, बहुत प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, उनका पोस्टमार्टम भी हुआ था, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। उसको हार्ट अटैक हुआ था, एथेरोस्क्लेरोसिस था। और प्राणिक यात्रा एक अलग प्रकार की यात्रा है, ये लिक्विड डाइट की यात्रा नहीं है। और रही बात भय की, तो सबसे पहला स्टेप 1 कैलोरी काउंट करो जो कर रहे हो, स्टेप 2 अपना वजन रोज चेक करो टू बी ऑन द सेफर साइड, स्टेप 3 आज जाके ब्लड टेस्ट करा लो और अपनी बहन जी को दिखा दो कि ये मेरे सारे ब्लड टेस्ट हैं और उसमें ये रिपोर्ट्स है। और जो भी इस यात्रा पर है उसमें केवल डाइट का एक छोटा सा रोल है, पर बाकी चीजें अगर नहीं करते और केवल डाइट से जुड़ते तो कुछ नहीं होगा, वो फिर उपवास होगा, रसाहार होगा, वजन घट जाएगा, बीमारी कोई होगी तो छूट जाएगी, ये बाकी सब चीजें होगी। बट जो प्राणिक यात्रा का जो प्रभाव है, परिणाम है, दिव्य शरीर की प्राप्ति, हायर कॉन्शियसनेस, वो नहीं हो पाएगा। ये यात्रा केवल भोजन की यात्रा नहीं है, भोजन एक छोटा सा टूल है इसमें, और बीमारियों से मुक्ति जो है वो अपने आप होगी। और रही बात भय की, तो ये भी एक डिटॉक्स है। अंदर से भय निकलेंगे, डाउट्स निकलेंगे, दूसरा कोई थोड़ा सा भी कहे आकर कि क्या होगा तुम्हारे गाल पिचक गए, तो सबसे पहला काम आदमी क्या करता है, जाकर आईना देखता है कि वास्तव में है क्या, और फिर उसको कंफर्म हो जाता है हो गया, तो तुरंत सब छोड़ देता है, क्योंकि हर एक को अपनी जो इमेज है, जो लुक है, वो अच्छा चाहिए, बहुत प्रिय। हमें सबसे, आत्मा को सबसे अधिक प्रिय वस्तु कौन सी है? शरीर। शरीर में भी सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? चेहरा। कोई लोग देखे तो एकदम आकर्षित हो जाए, हर एक को लगता है कि मेरा चेहरा खिला हुआ रहे, सुंदर रहे, चबी रहे। तो और रही बात डेथ्स की, तो कई सारे लोग हैं जो एक्सट्रीम में चले जाते, अति में चले जाते, अति सर्वत्र वर्जते। इसलिए हमने कहा इस डाइट में, इस यात्रा में सभी को इंक्लूड करने के लिए कुक को भी शामिल किया है, मिल्क को भी शामिल किया है, टी कॉफी सब को शामिल कर दिया, ताकि सब कर सके। अगर हमने ये कहा होता कि केवल और केवल रॉ करना है, तो आधे तो पहले ही आउट, क्योंकि रॉ सबके बस की बात नहीं है। रॉ से लोगों को, क्योंकि जिस शरीर में कुक्ड का टॉक्सिन भरा हुआ है उसको रॉ तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है। अगर कोई गिफ्ट में फल देता है, वो फल रूम पे रख के सड़ जाते, खाते नहीं और ना किसको देते है। ऐसे अनुभव है लोगों के। फ्रूट्स लोगों को पसंद नहीं है, कच्चा लोगों को पसंद नहीं है, जूसेस ज्यादा पसंद नहीं है। लोगों को क्या पसंद है, चाय पसंद है, कॉफी पसंद है, और अलग अलग वेराइटीज कुक्ड पसंद है। इसलिए सब कुछ इंक्लूड किया है इसमें। और रही बात मृत्यु की, तो मृत्यु के भय को जीत, मृत्यु का भय तो एकदम सबसे बड़ी कमजोरी है व्यक्ति की, जीवेशना, मरना नहीं चाहता है कोई, अंदर इच्छा रहती है जीने की। हमें तो इस भय से भी पार निकल जाना है, मृत्यु के भय से पार, बीमारियों के भय से पार, अमरता की यात्रा है। तो एक तो ये प्रश्न, दूसरा प्रश्न पूछा गया हाथों और पैरों में नमनेस। तो नमनेस का कारण होता है नर्व्स में कमजोरी, नसें जो है हमारी नर्व्स, उसमें कमजोरी, और इसका मुख्य कारण होता है B12, एक विटामिन होता है उसकी कमी। तो हो सके तो अपना विटामिन लेवल चेक करा लो, और उसके इंजेक्शन होते हैं, उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो सारी करा लो, तो ये नमनेस अपने आप चली जाएगी, एक कारण। दूसरा कारण होता है पीछे जो हमारा स्पाइन है, वो कभी नसें दब जाती है तो भी, नर्व एंट्रैपमेंट में भी ये सिम्टम्स होते हैं, तो गेट एन MRI डन। एक तीसरा, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में, अभी आते हैं ब्रदारियन की बात। ये तो हो गया लौकिक, जिसमें ये कमी वो कमी, ये कमी ऐसी कमी वैसी कमी, तो फिर वो लोग जो ना खाते ना पीते, उनके अंदर क्या, ये देखा गया है कि जो लोग सारे मैग्नीशियम की कमी है, जिंक की कमी है, विटामिन की कमी है, ये फला 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 जो मेडिकल साइंस कहता है, ऐसे लोगों को एक्सपेरिमेंट किया गया, सीधा वाटर फास्टिंग पे 21 दिन डाल दिया गया। They went on water fasting for 21 days. उसके बाद में ये सारे लेवल्स अपने आप ठीक हो गए। ये भी अनुभव लोगों के है, ना तो कोई सप्लीमेंट लिए, ना तो कुछ लिया, फिर ये कैसे ठीक हो गया, पर ये अनुभव है। लेवल 4 वाटर फास्टिंग, पानी पीना, केवल पानी। एक होता है ड्राई फास्टिंग, ना खाना ना पीना। वाटर फास्टिंग, खाली पानी पीना। जूस फास्टिंग, केवल जूस पीना। इंटरमिटेंट फास्टिंग, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 16 आवर्स, 18 आवर्स, 20 आवर्स, 22 आवर्स, वॉरियर डाइट 23 आवर्स, यह इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो ये सब फास्टिंग में आता है। तो देखा गया है कि शरीर जैसे ही टॉक्सिन से फ्री हो जाता है, जो शरीर को चाहिए शरीर अपने आप निर्माण करेगा। इसीलिए फिर उस लेवल पर, लेवल 4 पर व्यक्ति कुछ नहीं लेता है, फिर भी वो ठीक रहता है, जिंदा रहता है, आराम से रहता है। और सबसे बड़ा उदाहरण इसका है बनारस में, ये हुआ था, इसकी डेट है ग्रिट न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई ये स्टोरी है। ये व्यक्ति था जो पब्लिश हुआ, ग्रिट नाम का न्यूज़पेपर था, जुलाई 26, 1942 में। तो ये बनारस का योगी था, तो इसके इसको एक गड्ढा खोदा गया बहुत डीप, वो उसके अंदर गया, बैठ गया, ऊपर से मिट्टी ढक दी गई, कहीं से कोई सोर्स नहीं है उसका। 6 मास तक वो मिट्टी के अंदर रहा, जहां पर ना सूरज है, ना खाना, ना पीना, ना पानी, कुछ भी नहीं, ना हवा भी नहीं है। 6 मास तक वो अंदर रहा, और 6 मास के बाद वो बाहर निकला। तो कैसी थी उसकी कंडीशन, The yogi spent his time in the pit cell, reinformed with the bricks, और उसमें ईटे लगा दी गई थी ऊपर से, ताकि निकलने का कोई साधन ही नहीं, and cemented. The day he emerged from the tomb, a crowd of more than 1 lakh people, 1 लाख से ज्यादा लोग थे बाहर जब वो बाहर निकल रहा था, और वो जो डॉक्टर थे सब लोग थे वहां पे, डॉक्टर अत्रेय, वो कहते हैं, अत्रेय अपना अनुभव लिखते हैं, ये प्रोफेसर थे उस समय,
वो लिखते हैं द योगी वॉज ऑलरेडी अवेक, वो योगी जागा हुआ था. हैज रेज्ड हिज हैंड, उसने अपने हाथ उठाया टू इंडिकेट द फैक्ट दैट ही वॉज ड्रेस्ड टू द इंडिकेट द फैक्ट कि मैं मरा नहीं हूं, यह दिखाने के लिए उसने अपना, भीड़ थी 100,000 लोगों की, हाथ हिलाया. देन ही वॉज ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स, फिर उसको नए कपड़े पहना गया. हिज ओल्ड क्लोथ्स वेर पार्टली वर्न अवे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एटमोस्फियर अंडर द पिट एंड पार्टली ईटन अप बाय व्हाइट एंट्स सम ऑफ विच आर फाउंड कलेक्टेड ओवर पोर्शंस ऑफ हिज बॉडी. ही वॉज देन ब्रॉट आउट एंड कवर्ड विद ब्लैंकेट्स एंड प्लेस्ड ऑन एन ईजी चेयर ऑन हाई प्लेटफॉर्म विजिबल टू ऑल. द योगी लुक जस्ट द सेम एज वेन ही हैड एंटर्ड द पिट. 6 मास तक वो जमीन के अंदर गड़ा रहा और वो दिखाई में वैसे ही दे रहा था जैसे शुरुआत में दिखता था वैसे. इवन द बियर्ड ऑन हिज फ्रेड, उसकी जो दाढ़ी थी वो भी नहीं बड़ी. इसको सस्पेंडेड एनिमेशन इस तरह के. तो ये क्या है, हमारे शरीर की क्षमताएं है ये, वी आर अनलिमिटेड, ये सत्य अनुभव है. इसमें डेट और न्यूज़पेपर क्लिपिंग सब कुछ है, ये तो एक अनुभव हमने सुनाया. अभी हमारे शरीर की ये क्षमता है, हम कहते हैं प्राण प्राण प्राण, अब धरती के अंदर कहां से प्राण, हवा ही नहीं है वहां, तो फिर भी ऐसी टेक्निक्स योगियों ने ढूंढ के निकाली. तो ये हमारे शरीर की क्षमताएं है, अनलिमिटेड है हम. तो जो लेवल 4 है उसमें ये जो कॉस्मिक ऊर्जा है, ये जो कॉस्मिक एयर है, कॉस्मिक रेडिएशन है, इस एयर से ही व्यक्ति जीता है बस, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है. और शरीर में जो बनना है विटामिन प्रोटीन सब अपने आप बनता है. ये साइंस अब तक यहां पहुंचा नहीं है, साइंस इसको कहता है डेंजरस सूडो साइंस, साइंस इसको नहीं मानता है. पर धीरे धीरे साइंस में भी अभी बात करना चालू हो गया है, बायोफोटॉन्स और ये सब बहुत सारी थियोरीज आने लगी है. तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है वो पत्रकार जो है उनका है कि उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, पहले रॉ पे रहे, अनाज छोड़ा, एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गई, और अभी जब से ये 8 तारीख से भट्टी कर रहे हैं अभी थोड़ी ज्यादा ही सुस्ती आ रही है. तो इसमें बहुत सारी चीजें होगी, हमारा अपने आप से परिचय होगा. ये ना समझो कि इसमें सब अच्छा ही अच्छा होगा, हो सकता है पहले बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते थे, जब ये कर रहे तो सब डाउन हो गया. इसका मतलब अब प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि जिसे आप बहुत अच्छा कह रहे थे वो अच्छा था क्या, वो जो 2-2 बजे उठ रहे थे वो वास्तव में सही मार्ग था क्या. अब प्रश्न तो ये भी खड़े हो रहे, वो उठ तो रहे थे पर वो एक जस्ट एक रूटीन बन गया था, उसमें कुछ अनुभव हो रहा था क्या, शायद कुछ भी नहीं हो रहा है, वो भी एक भ्रम था पुरुषार्थ का. तो अभी ये जो नींद बढ़ गई है तो ऐसे हमें अपने बारे में बहुत सारी बातें पता चलेगी. इसलिए कहा कि कैलोरी देखते रहो, वेट देखते रहो, आज क्या क्या लिया वो देखते रहो, उसका प्रभाव अपने ऊपर देखते रहो, और फिर कल देखो क्या होता है. आज अगर कुछ ले लिया उसका प्रभाव 2 दिन में पता चलता है, कुछ हेवी ले लिया, सूप में भी हेवी सूप ले लिया तो प्रभाव पता चलता है. अब हमारा ही बता रहे, हमें 2-3 मास पहले केला लिया था तो केले से गला एकदम बंद हो गया था, बीच में देखा होगा, बाकी कुछ भी तकलीफ नहीं थी पर गला आवाज ही बदल गया था और बाकी ना बुखार ना कुछ. तो फिर उससे बाहर निकल गए, 1 हफ्ता लगा उसको, उससे बाहर निकले उसके बाद सोचा वापस केला ट्राई करते, तो वापस केला ट्राई किया कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई किया कुछ नहीं हुआ, अभी 2-3 दिन से ट्राई किया वापस ऐसा लग रहा है गले में कंजेशन आ गया. ऐसे हो रहा है कल रात से. तो शरीर में एक मेमोरी है, सेल्स की एक मेमोरी है कि उस वो लेने से मुझे ये होता है, पर हमें इस मेमोरी से भी पार निकल जाना है. ये भी तो एक कमजोरी है कि मैंने उसको, क्योंकि केला तो बदला नहीं, बदला तो मैं हूं, केला तब भी वही था, केला आज भी वही है, रहेगा वही, पर मैं बदल रहा हूं. इसके लिए ये हमें अपने शरीर के बारे में बहुत सारी बातें पता चलेगी, अपने योग के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में, अपनी नींद के बारे में, कब्जी के बारे में, डिटॉक्स सिम्टम्स के बारे में. तो ये जो कुछ हो रहा है इसको साक्षी होकर देखते रहो और मॉडिफिकेशन करते रहो. पर एक चीज नहीं छोड़नी, अगर 21 दिन का संकल्प है तो 21 दिन तक लिक्विड्स को चलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए. ये 21 दिन अगर सफल कर लिए तो इसकी एक मेमोरी बन जाएगी हमेशा के लिए अपने पास, कि हमारे अंदर वो क्षमता है कि मैं 21 दिन केवल लिक्विड्स पर रह सकता हूं. एक पावर होगी वो, जैसे मैराथन की होती है, कोई 21 किलोमीटर दौड़ लेता है और फिर कई सालों तक दौड़ता ही नहीं, पर उसके पास पता है मैं दौड़ा हूं. कल की मुरली में था ना, बना बनाया बन रहा है, मैं हमने किया है ये, मुझे पता है. अभी नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं कर सकता हूँ। और लोगों का ये अनुभव भी है, एक व्यक्ति है जो पहले मैराथन दौड़ता था मार्शल आर्ट्स में था, फिर वो सब छोड़ दिया, प्राणिक यात्रा पे चालू कर दिया उसने, और फिर एक दिन सोचा, 3-4 साल दौड़ा ही नहीं, फिर एक दिन सोचा आज दौड़ के देखता हूं। अब बिना प्रैक्टिस के ही रैन 20 किलोमीटर, क्योंकि बॉडी में अभी लिक्विडिटी है, लो लिक्विडिटी का है, पहले तो सॉलिड था, उसमें प्रैक्टिस चाहिए, सब कुछ चाहिए, इसमें ये सब की आवश्यकता नहीं है। तो आप में अंदर वो क्षमता आएगी, जब चाहो सॉलिड पर भी जाओ लिक्विड पर भी जाओ वो पावर आती जाएगी। तो यहाँ पर वो जो सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, उसको भी समझो, और नींद का केवल भोजन से ही संबंध नहीं है, बहुत सारी और भी बातें हैं जिससे संबंध है। अगला प्रश्न है, ये एक बच्ची का है, तो प्राणिक यात्रा के जो प्रयोग हुए हैं वो बच्चों पर अभी तक तो हुए नहीं है, परंतु ये बच्ची को पहले से ही बहुत सारे अनुभव है, 31 डेज तो उसने ये किया है, फ्रूट्स पर किया है, और अभी उसको जो हो रहा है, मुझे लगता है ये जो भी माता बोल रही है हमसे पर्सनली अगर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, इस मंच पर इस ऐसे प्रश्न का उत्तर देना कठिन होगा, क्योंकि बच्चों के साथ क्या क्या होता है ये बहुत मुश्किल है समझना, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करना होता है। जैसे हमारी एक लौकिक दूर की एक बहन है, उसका एक दिन फोन आया, वो कहती है सचिन भाई देखो मेरे बेटे को क्या हो रहा है, वो फर्स्ट MBBS में था, वो ना उसको बाबा दिखाई दे रहे हैं, उससे बाबा डायरेक्ट बात कर रहे हैं, उसको आपकी भी आवाज सुनाई दे रही है। मैंने कहा अच्छा, और वो बहुत खुश हो रही है, उसको तो लग रहा है कि मेरे बेटा भी ज्ञान में, सारे लक्षण उसको मतलब चमत्कार हो रहा है, साक्षात्कार हो रहे हैं, वो ज्ञान में नहीं चलता था और उसको अचानक ये सब होने लगा। बोला अच्छा, बात करा उससे, मैंने उससे बात की, तो उसके जो भी सारे सिम्टम्स थे वो सब साइकेट्रिक सिम्टम्स थे। मैंने कहा इसको ये सब छोड़ो, ये आध्यात्मिक अनुभूतियां नहीं है, दीज आर साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन, टेक हिम इमीडिएटली टू डॉक्टर। उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले लिया, ही वॉज डायग्नोस्ड सिज़ोफ्रेनिया, वो सब सिज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स थे, उसकी दवाई चालू हो गई, और दवाइयों के बाद ही इज मच बेटर नाउ, अभी भी दवाई चालू है, इस बात को 6 साल हो गए, अभी भी थोड़ी मेडिसिन चालू है, पर ही बहुत स्टेबल है वो। नहीं तो लोग क्या करते हैं, ये सारी जो चीजें हो रही है ना, इसमें आत्मा ने प्रवेश कर लिया है, ये भूत प्रेत का साया है, या कुछ और हो रहा है, या फिर कुछ तो आ गया, कुछ ये हो रहा है, वो हो गया, ये सब आध्यात्मिक चीजें जोड़ देते हैं और साइकेट्रिक डायग्नोसिस छूट जाता है। हमारे हॉस्पिटल में ही हम कितनी बार देखते, जो पेशेंट के अटेंडेंट होते ना, वो आके कहते डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, क्या लगता है दवाई चालू है, वो कहती है 3-3 है। हमने कहा क्या 3, 3 आत्माएं घुसती है उसमें रात में, मैं उसके साथ सोती हूँ रात में। जो माता अटेंडेंट होती है ना बहनों के साथ, भाई या भाई आते हैं, वो आके कान में ये जब बात बतानी होती है ना, 3 वाली या 4 वाली, थोड़ा नजदीक सरक के इधर उधर देख के बताते, 3-3
आप बोलना 3 नहीं 5 दिखाई दे रही है।
तो कई बार ऐसा ही होता है कि जो साइकेट्रिक बीमारियां हैं उसको किससे जोड़ा जाता है, ये आध्यात्मिक सारी चीजों से, और डायग्नोसिस डिले हो जाता है व्यक्ति का। इसके लिए चलो वो भी सत्य है, वो भी हो सकता है, बट फर्स्ट रूल आउट सारी मेडिकल कंडीशन। लोगों को मिर्गी का दौरा पड़ता है, अभी अभी हमारा टॉक था मिर्गी पर हॉस्पिटल में, 2 फरवरी जो होता है हर साल का इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे था, तो हमारी डॉक्टर है पूजा, उसने प्रेजेंटेशन किया था उधर दिल्ली से, डॉक्टर स्वपन है GB पंत, उन्होंने भी वहां से किया, डॉक्टर निखिल पटेल, ये सब ने मिलके एक वर्कशॉप किया, तो उसमें वही दिखाया गया। पहले ये जो मिर्गी की बीमारी है, लोग क्या समझते थे, भूत ने प्रवेश किया, आत्मा ने प्रवेश किया, या ये पागल है, और वो बीमारी डिले हो जाती थी, लोग उसको अछूत समझते थे, उससे शादी नहीं करते थे, पर वो बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट है, उसकी सर्जरी है, फर्स्ट रूल आउट मेडिकल रीजंस, उसके बाद ही साइकेट्री का सोचना। तो यहां पर भी ये बच्ची को जो कुछ हो रहा है तो ऊपर से बहुत अच्छा लगता है कि एकदम छोटी बच्ची और सीधा प्राणिक यात्रा में आ गई, पर बहुत सारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं और साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन होते हैं जो पता ही नहीं चलते, माँ बाप सोचते हैं, माँ बाप नहीं देख पाते, ये तीसरा व्यक्ति ही देखता है जो नॉन जजमेंटल होता है, 3rd पर्सन जो आपके घर के बाहर का है, वही डायग्नोस कर पाता है कि बेटे को पता ही नहीं चलता माँ ऐसी क्यों है, अरे वो डिप्रेशन में है, शी नीड्स ट्रीटमेंट, उसको लगता है उसको थोड़ा ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो मेडिकल कंडीशंस को पहले रूल आउट करना है, उसके बाद ही बाकी चीजें। नेक्स्ट, तो ये बात कर ले एक बार।
ओम शांति भाई जी, सन गेजिंग के लिए सुबह और शाम टाइम नहीं होता, तो किसी ने हमें कहा कि किसी भी टाइम करें, 3 महीने तक लगातार करें तो चश्मा उतर जाएगा। हमारा नंबर है 3। हमने 2 दिन तो किया लगातार दोपहर में, लेकिन अभी आंखों से इतना क्लियर, मतलब कुछ गड़बड़ सी वो लग रही है, अब क्या करें इनका, और सन गेजिंग दोपहर को करें या नहीं करें?
स्टॉप सन गेजिंग कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से बंद कर दो सन गेजिंग करना, ये आपके लिए नहीं है। अगर लक्ष्य है कि कोई बीमारी से ठीक होना है तो वो लक्ष्य सन गेजिंग नहीं। हमारा ये प्राणिक लिविंग का टूल है सबसे पहली बात। दूसरा, जिनको कैटरेक्ट है, जिनके ऑपरेशन हुए हुए आंखों की बीमारी है, उन सबको ये सब नहीं करना है, और दोपहर में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, वैसे भी नहीं करना है। वैसे हमारे इतने सारे इंस्ट्रक्शंस क्लासेस में दी गए, केवल सुबह और शाम, और वो भी आधा घंटा या एक घंटे के अंदर, यूवी रेज जहां बहुत कम होते हैं। परंतु सन गेजिंग से है तो बहुत अच्छा, और कई लोगों की, हजारों लोगों की बीमारियां ठीक हो गई, आंखों की रोशनी बढ़ गई है। बहुत सारे देश है जहां पर सामूहिक रूप से सन गेजिंग होती है, बट देयर इज समथिंग नोन एज सोलर रेटिनोपैथी। आंखों में अंदर जो पर्दा होता है उसमें छेद पड़ जाता है, अगर अति में जाओगे तो, दोपहर का सूरज सीधा देखना चालू करोगे तो आंख अंधे हो सकते हैं, ब्लाइंड हो सकता है व्यक्ति।
सनबात जो होता है,
सनबात करो, कितना भी कर सकते हो,
सूरज भी कर सकते हो,
हाँ कितना भी करो, कभी भी करो, अच्छे से सूरज में बैठ जाओ, घूमो फिरो, पसीना आने दो। वैसे भी विटामिन डी लेवल सभी का लो है, विटामिन डी अपने आप बढ़ते जाएगा, तो सनबात कभी भी कर सकते हो। दूसरा, अगर करना ही है और इतना प्यार है सूरज से, आंखें बंद करके करो, घर के अंदर रह के करो, और जरूरी नहीं दोपहर में तो कभी नहीं करना है। हाँ, ये जो दोपहर में करने का, ये जो बहुत एडवांस्ड योगी है जैसे उमाशंकर योगी, वो तो सीधा 12 बजे के सूरज को देखता है एक घंटा दो घंटा, ये उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। और जिनको पहले से कैटरेक्ट है और आंखों की बीमारियां है, तो वो कुछ भी हो सकता है उसमें, इसलिए करना नहीं है स्टॉप। दूसरे टूल्स है ना, हमारा ये जो प्राणा प्रोग्राम है उसमें हजारों टूल्स दिए, उसमें सन तो एक छोटा सा है, और फिनलैंड जैसे देश, एंटार्क्टिका देश, जहां तो सूरज ही नहीं है, वो क्या करेंगे? अच्छा, जो जन्मांध है वो सन गेजिंग नहीं करेगा तो लेवल 4 पर नहीं पहुंचेगा। ये एक छोटा सा टूल है, उसके पीछे पागल नहीं होना है। एक बहन का अनुभव है कि उसको, कन्या है या बहन है पता नहीं, उसको कहा कि वो सेंटर पर जाओ, वो कहती मैं नहीं जाऊंगा वहां सूरज नहीं है। विद्रोह कर दिया उसने। अति में जाना है तो कहीं पर भी जा सकता है व्यक्ति, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगी, वो सेंटर जो है शहर के बीचों बीच है, मैं वहां नहीं जाऊंगी, वहां मुझे सूरज चाहिए। अति में जाने वालों की कमी नहीं है, ज्ञान की उल्टी गंगा बहाने वालों की कमी नहीं है। इसलिए कई बार कह रहे हैं प्राणिक टूल है वो छोटा सा एक, वो नहीं है तो भी कर सकते हैं, वो जिद से नहीं करना है। और दूसरी बात, लोग सन गेजिंग किस लिए करते हैं? वजन घटाने के लिए, आंखों की ये कैटरेक्ट, कितने स्वार्थी है ये। सूरज से दोस्ती करो, इसलिए करो ही नहीं कि ये यात्रा है, बस अच्छा लगता है इसलिए करो। बेयर फुट वॉक इसलिए क्योंकि बहुत मजा आता है, इसलिए करो। नेक्स्ट।
ओम शांति सचिन भाई जी, ओडिशा से पूजा। भाई जी, पहले से आपकी बहुत सारी भट्टियां कर चुकी हूँ, आपकी हर क्लास सुनती हूँ। ये लिक्विड जर्नी बहुत एंटरटेनमेंट कर रहा है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। बचपन से मुझे पीना अच्छा लगता था, ऐसे लगता था पीकर भी जी सकते हैं, लेकिन प्राणिक जर्नी के बारे में हमें पता नहीं था, अब सपना सच हो रहा है भाई जी। थैंक यू, ओम शांति।
ओम शांति। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरी एज 44 है, मेरा वेट 45 है, तो मैं लिक्विड डाइट पे हूँ और अच्छा लग रहा है, बहुत ही लाइट फील होता है, अच्छा लगता है, कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा है। और थैंक यू सो मच बाबा, जो इतना अच्छा लाइफ हम लोग को दे रहे हैं। थैंक यू एंजल ऑफ शिवा टीम, और भाई जी को भी थैंक्स, थैंक यू सो मच कि एक न्यू लाइफस्टाइल से हम लोग को परिचय करवाएं। तो ये लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, और बट वन थिंग इज कि लिक्विड डाइट पर ही है, 3 times चाय सुबह को, और वैदिक सूप लेना और स्मूदी लेना, और इस तरह से चल रहा है अब तक। आगे भी बहुत ही मजा आ रहा है, इसलिए आगे भी चलने के लिए दो राय नहीं है कि नहीं चलना है, चलना ही है। और बस मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा वजन जो है और एज के हिसाब से बहुत ही अजीब सा है कि 44 एज और 45 वजन, तो इसके लिए मुझको प्लीज गाइड करें कि क्या ये सही है कि नहीं है, पता नहीं। वैसे मैं कुमारी हूँ और मैं स्कूल टीचर भी हूँ और फैमिली में भी रहती हूँ, तो फैमिली वाले भी नजर रखते हैं कि ये क्या खाती है क्या पीती है, और अगर उन लोगों को कुछ लग रहा है तो वो लोग थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं कि तो क्या कर रही है। हाँ, लेकिन मुझको तो बहुत अच्छा लग रहा, और मैं स्कूल जाती हूँ आते वक्त वही गन्ने का जूस या नारियल पानी कुछ भी खरीद के मैं पी लेती हूँ, और मेरा 6 आवर्स बाहर रहना पड़ता है मुझको, तो इन दिस सेंस जो भी है। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
ओम शांति भाई साहब, मैं ग्वालियर से, नाम मेरा ममता है, उम्र 32 है, वजन 40 था पहले लेकिन अब 2-3 किलो बढ़ गया। छोटा सा ग्रुप है हमारा जिसमें शुरू में सबको जुकाम खांसी वीकनेस नींद बुखार हुआ, लेकिन अब सब ठीक हैं। आपका और पूरी एंजल ऑफ शिवा का धन्यवाद।
हरियाणा के जींद जिले के नवाना शहर से हूँ। okay. मैं 53 ईयर।
ओम शांति। आज सब गड़बड़ हो गया, आज ब्रेकफास्ट लंच दोनों सॉलिड लेना पड़ा, अब डिनर भी सॉलिड ही लेना पड़ेगा क्योंकि आज पति ने छुट्टी लिया है, आज वो घर पे है और सैटरडे संडे भी ऑफ होता है उनका, लेकिन सैटरडे संडे मैनेज कर।
आवाज बढ़ाओ थोड़ा।
लेते थे क्योंकि वो सोते थे और ऐसे कर। ओम शांति। आज सब गड़बड़ हो गया, आज ब्रेकफास्ट लंच दोनों सॉलिड लेना पड़ा, अब डिनर भी सॉलिड ही लेना पड़ेगा क्योंकि आज पति ने छुट्टी लिया है, आज वो घर पे है और सैटरडे संडे भी ऑफ होता है उनका, लेकिन सैटरडे संडे मैनेज कर लेते थे क्योंकि वो सोते थे और ऐसे करके ना, बट आज वो सुबह उठ गए तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करें।
फिर भी इतना बड़ा सत्य सुनाया सबके सामने, कितनी बड़ी बात है, विजेता है ये।
ओम शांति भाई जी। भाई जी 9 डेज तो किया, बहुत अच्छा रहा। बस योग में जब बैठते हैं तो हाथ सुन्न हो जाते हैं दोनों, तो आगे ये सिम्टम कभी नहीं आया, रिपोर्ट्स वगैरह सारी ओके होती हैं। और थोड़ा सा एक दिन उदासी आई थी, और भाई जी ये पूछना था कि अगर अब ऐसा रूटीन रखें कि सुबह से लेकर शाम तक लिक्विड लिक्विड लें और एक टाइम हल्का भोजन लें तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा क्या। ओम शांति।
ओम शांति। मेरा क्वेश्चन है कि अगर लंबा समय तक हम लिक्विड लेते हैं तो उसके बाद क्या हमारी बॉडी सॉलिड फूड एक्सेप्ट नहीं करेगी, डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होंगे कुछ।
ओम शांति भाई जी।
अच्छा।
आज का मेरा 10th डेज भी कंप्लीट हुआ रनिंग डाइट का, एंड इट्स बिकॉज ऑफ बाबा, एंड बहुत अच्छी जर्नी रही है अभी तक की। बस मुझे थोड़ा जब लिक्विड लेने में थोड़ा गैप हो जाता है बीच में, तो उसी वजह से मुझे मे बी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम मीन्स थोड़ी सी थकान एंड वीकनेस आ जाती है, एंड इस वजह से थोड़ा सा वो लिक्विड में मेरा गैप हो जाता है भाई जी। और मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और इवन आज तो मेरे स्कूल में मैं मॉर्निंग में से ही थोड़ा सा एक्टिविटीज थी, इवन बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स था तो स्पोर्ट्स में भी मैंने एवरी स्पोर्ट्स आई एंजॉयड। और जो मेरा आज का है और टाइम, तो मैं स्कूल टाइम में तो लिक्विड लेती हूँ, मॉर्निंग में जूस लेती हूँ, देन टी लेती हूँ, देन मैं स्कूल में टी लेती हूँ और उसके साथ मैं कुछ जैसे कि या कभी जूस या कभी स्मूदी बना के ले, जूस तो मैं वैसे पैकेट वाला ले जाती हूँ एंड स्मूदी बना के ले जाती हूँ तो वो, एंड घर आके भी एक कप चाय हो जाती है। बट
तो ये जो गैप है, गैप नहीं देना है क्योंकि ये शुरुआत है लिक्विडेरियन जर्नी की, शुरुआत में आपको भूख लगने ही नहीं देना है, लेते रहना है कुछ कुछ, उठते ही आँख खुलते ही पीना चालू, ताकि वो क्रेविंग ना हो, क्योंकि अगर लंबा गैप दिए तो उसके बाद में फिर सॉलिड फूड खाने की इच्छा होगी और फिर नियम टूट जाएगा। इसलिए इससे पहले कि भूख लगे पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। और ये एक बात बताइए, दूसरी बात, लिक्विड डाइट अगर लंबा समय चलाते हैं तो बॉडी सॉलिड फूड को ले सकेंगी क्या, तो इसकी चर्चा हम लास्ट फ्यू डेज में करेंगे। 21 दिन की ये भट्टी पूरी होगी, फिर सॉलिड फूड पर आना है, कैसे आना है उसकी चर्चा होगी थोड़ी सी, और हमारे शरीर में वो क्षमता है कि जब चाहो हम सॉलिड में आ सके, जब चाहो लिक्विड में जा सके। ये पावर हम में आ जाएगी, आज वो पावर नहीं है, क्योंकि आज अगर सॉलिड में गए तो गए, बस फिर वापस आते ही नहीं है कभी। एक पावर ऐसी आएगी कि फिर हम अपना डिजाइन खुद करेंगे। कई लोग ऐसा करते हैं कि हर महीना में 7 दिन सॉलिड रहते हैं और बाकी 21 दिन की भट्टी हर महीने करते, 1 से 21 लिक्विड्स और फिर 7 दिन में सॉलिड लेते। और कई लोग ऐसा करते हैं, 1 दिन सॉलिड 1 मिनट लिक्विड, 1 दिन सॉलिड 1 मिनट, वो आप खुद डिजाइन करेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा है 9 दिन का किया पावर में सुन हो रहे हैं, तो जैसे कहा कि हाथ पाव सुन होना, ये सब होना, B12 की कमी होती है, हो सकता है तो इसके इंजेक्शन होते हो ले लो। दूसरा सैडनेस आती है तो ये भी आएगा, अप डाउन होगा। उसके बाद में ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये हस्बैंड वाला प्रश्न है, तो इसमें तो अभी क्या बोले थोड़ा युक्ति से कुछ काम चलाना पड़ेगा। हाँ बस बस ऐसे कुछ बोलो कि पेट में आज डॉक्टर ने बोला है, थोड़ा हल्का रखो करके। और दूसरा किसी का वेट बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तो है वेट घटे ना, उससे ऊपर की स्टेज है कि वेट स्टेबल रहे, वेट स्टेबिलाइज। अगर किसी का बढ़ रहा है तो मतलब प्राणा स्टेबिलाइज्ड हो रहा है, प्राणिक इंस्टॉलेशन प्रतिष्ठित हो रहा है शरीर में प्राणिक ऊर्जा, और अपने आप स्थापना हो रही है। अब उसका भोजन, क्योंकि पहले जब सॉलिड लेते थे 2000 कैलोरीज थी, अभी भी 2000 पर लिक्विड्स ले रहे, मतलब ये कॉन्फिडेंस है कि लिक्विड में भी जिया जा सकता है और वही कैलोरीज है जो लिक्विड की थी, सॉलिड की थी, और या उससे भी कम, 1500 कैलोरीज है, पहले तो 4000 कैलोरीज थी सॉलिड की, वो भी इतना टॉक्सिन, इतनी मेहनत शरीर को, और अभी केवल 1500 कैलोरीज में वेट स्टेबल है या बढ़ रहा है, ये तो उपलब्धि है। दिस इज लेवल 4, लेवल 3 में पहुंच रहे हैं आप धीरे धीरे। लेवल 3 ब्रदरियन अर्थात 4 महीने तक स्टेबल, 4 महीने लिक्विड्स और स्टेबल उसमें। और फिर पूछा गया न्यू लाइफस्टाइल है, बस वो एक वो हस्बैंड वाला ही, उसका हम ज्यादा नहीं बता सकते वो आपको कुछ ना कुछ तो युक्ति करनी पड़ेगी, खुद ही युक्ति करो तो कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। ओम शांति, बस विजयी भव याद रखना।
तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव, सांगे सांगे में तेरे। घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल, तू निकल माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भवा।